नमस्कार श्रोताओ, कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम नए नियम की पुस्तक में से मरकुस रचित सुसमाचार का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं। हमें विश्वास है कि इस पुस्तक से आपको लाभ मिल रहा है। इसमें प्रभु यीशु मसीह के जीवन और उसकी सेवकाई के विषय में बताया गया है। तो आइए अपने वक्ता के साथ आज के इस अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले सुनते हैं एक मधुर गीत।
आज गुना के सबब से दिल मेरा नाशाद है। आज गुना सबब से दिल मेरा नाशाद है। माफ कर मेरे गुनाह, तुझसे मेरी फरियाद है। आज गुनाह के सबब से दिल शाद है। दोस्तों का साथ है गुनाह की जिंदगी। दोस्तों का साथ है गुनाह की जिंदगी। कैसे पास आऊं तेरे, अब रूह मेरी बर्बाद है। कैसे पास से मेरी फरियाद है। आज गुनाह के सबब से दिल मेरा नाशाद है।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आपको मेरा नमस्कार। मैं विश्वास करता हूं कि प्रतिदिन की तरह आज भी आप परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए तैयार बैठे हैं। मित्रों, पिछले अध्ययन में हमने मरकुस रचित सुसमाचार उसके एक अध्याय और उसके एक पद से 15 पद तक हमने देखा था, और आज हम अपने अध्ययन को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम अपने वचन में जाएं, उसके गहनता को सीखें, आइए हम अपने शरों को झुकाएं और परमेश्वर से सहायता मांगें। हमारे अत्यंत दयालु प्रेम पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के समय के लिए जिसे आपने हमें दिया है, ताकि हम फिर से आपके वचन को रेडियो के माध्यम से सुन सकें। पिता परमेश्वर, जब हम आपके वचन का मनन चिंतन करना चाहते हैं, आपके वचन में से सीखना चाहते हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों के आत्मिक आंखों को, उनके कानों को, उनके हृदयों को, उनके विचारों को और उनके एकाग्रतापन को खोल दें, ताकि जब हम आपके वचन में से सीखते हैं तो निश्चित रूप से आपका जीवित वचन एक एक के जीवन से बातचीत करने पाए। और होने दे पिता परमेश्वर कि जब हम इस वचन में से सीखते हैं तो अपने जीवन में आपके उन महान महान आशीषों को ग्रहण कर सकें। सामर्थ्य पिता परमेश्वर, आप हम सब के सहायक होइए। यदि कोई निराश है, दुखी है, चिंता में है, बीमारी में है, तकलीफ में है, किसी प्रकार की समस्या में है, प्रभु आप उस पर कृपा दृष्टि कीजिए, उसे भी इस वचन के द्वारा से शांति प्रदान कीजिए। इस समय को हम आपके हाथ में दे देते हैं और बड़े धन्यवाद के साथ प्रार्थना आपके बेटे अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, आइए हम अपने अध्ययन को आगे बढ़ाते हैं और मरकुस रचित सुसमाचार उसके एक अध्याय उसके 16 से 20 पद को पढ़ते हैं। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, गलील की झील के किनारे किनारे जाते हुए उसने शमौन और उसके भाई अंद्रियास को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वे मछुए थे, और यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ, मैं तुमको मनुष्यों के मछुए बनाऊंगा। वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए, और कुछ आगे बढ़कर उसने जब्दी के पुत्र याकूब और उसके भाई यहुन्ना को नाव पर जालों को सुधारते देखा। उसने तुरंत उन्हें बुलाया और वे अपने पिता जब्दी को मजदूरों के साथ नाव पर छोड़कर उसके पीछे चले गए। मित्रों, यहाँ शिष्यों का बुलाया जाना स्पष्ट तीन चरणों में है। पहला है यूहन्ना पहला अध्याय उसके 35 से 51 में हम पढ़ते हैं, जहां पर इसको व्यक्त किया गया है कि जब यीशु यरूशलेम आया तब इन पुरुषों से उसका साक्षात्कार हुआ और उसने इन्हें बुलाया। यह बुलाहट अनौपचारिक था, वे जानना चाहते थे कि यीशु का निवास स्थान कहाँ था, क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने उसे एक असामान्य व्यक्ति कहा था और यूहन्ना के शिष्य भी उसका अनुसरण करते थे, परंतु उसके साथ ठहरते नहीं थे और न ही वह उन्हें ठहरने के लिए वाद्य करता था। वे गलील सागर में मछली पकड़ने के लिए लौट गए थे। और दूसरा है, हम देखते हैं कि वह अपनी सेवा के आरंभ में वह गलील सागर के तट से गुजर रहा था, तब उसने शिष्यों को मछली पकड़ते देखा और उन्हें शिष्य बनाने के लिए बुलाया, उन्हें मनुष्यों का मछुआरा बनने के लिए बुलाया। परंतु लुका रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसके 1 से 11 पद में व्यक्त है कि वे फिर से मछली पकड़ने चले गए थे। और तीसरा है, अंतिम बुलाहट प्रेरित होने की बुलाहट थी। मित्रों, मरकुस 3 में, मती 10 और लुका 6 में लिखा है कि वे लौटकर मछली व्यवसाय में लग गए थे। इसी कारण शिमोन पत्रस ने यीशु से कहा था, हे प्रभु, मुझसे दूर हो, क्योंकि मैं एक पापी मनुष्य हूँ। उसका कहने का अर्थ था कि वह एक ऐसा मनुष्य था जो यीशु को एक बार निराश कर चुका था, इसलिए यीशु किसी और की खोज करें। यही कारण था कि वह अपने आप को पापी कह रहा था, परंतु यीशु ने उसका त्याग नहीं किया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और इस प्रकार प्रभु तीसरी बार आया और उन्हें प्रेरितों में नियुक्त किया। हम मरकुस रचित सुसमाचार 1 अध्याय के 21 पद में आगे पढ़ते हैं, जहां पर लिखा हुआ है, और वे कपरनहूम में आए और वह तुरंत सप्त के दिन सभा के घर में जाकर उपदेश करने लगा। मित्रों, आपको ध्यान होगा कि जब धर्म गुरुओं ने उसे सप्त के दिन काम करने का प्रश्न किया, तब उसने स्पष्ट किया, मेरा पिता अब तक काम करता है और मैं भी करता हूं। हम देखेंगे कि यीशु सामान्य 8 घंटे काम नहीं करता था। सुन, इसराइल का रक्षक ना ऊंघेगा और ना सोएगा, यह वचन हमें भजन संहिता 121 उसके 4 में मिलता है। यह शब्द का दिन सुबह आरंभ हुआ था जब वह आराधनालय में शिक्षा दे रहा था। कफरनहूम का यह आराधनालय उस युग में कोई मुख्य आराधनालय नहीं था। ऐसा प्रतीत होता है कि नासरत में उसके अपने लोगों ने उसे स्वीकार नहीं किया था। अतः वह कफरनहूम चला गया था और अपने संपूर्ण सेवा काल तक वह वहीं से कार्य करता रहा। तब हम आगे मरकुस 1 उसके 22 में पढ़ते हैं, जहां पर लिखा हुआ है, और लोग उसके उपदेश से चकित हुए, क्योंकि वह उन्हें शास्त्रियों की नाई नहीं परंतु अधिकारी की नाई उपदेश देता था। मित्रों, यहां सत्य के सामर्थ का प्रभाव देखते हैं और यीशु की प्रचार शैली भी देखते हैं। आज कलीसिया और सेवा कार्य का दोष यह है कि हम अधिकार के साथ नहीं कहते। इसका प्रमुख कारण यह भी है कि हमने विश्वास खो दिया है। सेवा कार्य के प्रयास में आज परमेश्वर के वचन का प्रचार और उसकी शिक्षा का स्थान ही नहीं रह गया। वे सत्य से दूर जा चुके हैं और प्रचार मंच तथा परमेश्वर का वचन दो अलग अलग मार्ग हो गया है। उस युग में आराधनालयों में मनुष्यों को देने के लिए आत्मिक पोषण नहीं था, इसलिए जब प्रभु प्रचार करता था तब वे उसकी शिक्षा पर अचंभा करते थे। हम मार्कुस 1:23-24 में पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, और उसी समय उनकी सभा के घर में एक मनुष्य था जिसमें एक अशुद्ध आत्मा थी। उसने चिल्लाकर कहा, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमें नाश करने आया है? मैं तुझे जानता हूं, तू कौन है? परमेश्वर का पवित्र जन। मित्रों, मरकुस के सुसमाचार में यह पहला आश्चर्य कर्म आत्मिक संसार का है। आत्मिक संसार का नियंत्रण परमेश्वर के हाथ में है, दुष्ट आत्माएं भी उसके अधिकार के अधीन रहती है। रोमन साम्राज्य में प्रेतों अर्थात दुष्ट आत्माओं की बहुतायत थी। इसके अनेक ऐतिहासिक प्रमाण भी हैं। दुष्ट आत्माओं का सामना करने का एकमात्र मार्ग मसीह यीशु है, क्योंकि केवल वही है इस संसार में प्रवेश कर सकता है। यही कारण है कि मरकुस इस चमत्कार को आरंभ में ही रखता है। मित्रों, वह यह सिद्ध करना चाहता है कि मसीह यीशु को इस संसार पर भी अधिकार है। दूसरी बात यह है कि केवल परमेश्वर ही ऐसा कर सकता है। वे सब यीशु के प्रमाण पत्र थे, उसमें अधिकार था, उसमें सामर्थ था, वह अधिकार से शिक्षा देता था। यहां वह दिखता है कि उसके पास अधिकार भी है। आज के युग में भी यही स्थिति है। मित्रों, दुष्ट आत्माओं से निपटने का एक ही मार्ग है, और वही है जो दुष्ट आत्माओं पर अधिकार प्रकट कर सकता है। यह मरकुस के सुसमाचार में पहला आश्चर्य कर्म है। हम मरकुस 1:25-27 पद में पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, यीशु ने उसे डांट कर कहा, चुप रह और उसमें से निकल जा। तब अशुद्ध आत्मा उसको मरोड़कर और बड़े शब्द से चिल्लाकर उसमें से निकल गई। इस पर सब लोग आश्चर्य करते हुए आपस में वाद विवाद करने लगे कि यह क्या बात है, यह तो कोई नया उपदेश है। वह अधिकार के साथ अशुद्ध आत्मा को भी आज्ञा देता है और वे उसकी आज्ञा मानती हैं। मेरे मित्रों, यहां ध्यान दीजिए कि यीशु आश्चर्य कम करने में और शिक्षा देने में अपने अधिकार का प्रदर्शन कर रहा है, जिसे वे समझ पा रहे थे। मार्कुस 1:28 में हम आगे पढ़ते हैं, सो उसका नाम तुरंत गलील के आसपास के सारे देश में हर जगह फैल गया। मार्कुस अब दूसरी घटना का उल्लेख करता है, जो यह तो उसी दिन की बात है या अगले दिन की। मार्कुस 1:29-31 पद में हम पढ़ते हैं, और वह तुरंत आराधनालय में से निकलकर याकूब और योहना के साथ शमौन और अंद्रियास के घर आया, और शमौन की सास ज्वर से पीड़ित थी, और उन्होंने तुरंत उसके विषय में उससे कहा। तब उसने पास जाकर उसका हाथ पकड़ के उसे उठाया, और उसका ज्वर उस पर से उतर गया, और वह उनकी सेवा टहल करने लगी। मित्रों, ध्यान दीजिए कि उसे सास कहा गया है। वह पत्रस की पत्नी की माता थी। मेरे विचार से सास संबोधन की यह एक अच्छी विधि है। मैं इस विचार को स्वीकार करता हूँ। अतः यह दूसरा आश्चर्य कर्म है जो उसने उस दिन किया। और जब संध्याकालीन घटनाओं का उल्लेख आता है, तब हम मार्कुस 1:32 में पढ़ते हैं, संध्या के समय जब सूर्य डूब गया तो लोग सब बीमारों को और उन्हें जिनमें दुष्ट आत्माएं थी उसके पास लाए। मित्रों, यहाँ फिर से ध्यान दीजिए कि दुष्ट आत्माओं और शैतान में अंतर है। शैतान एक ही है और दुष्ट आत्माएं अनेक हैं। हम आगे चलकर इसके बारे में और अधिक देखेंगे। मार्कुस 1:33-34 पद में हम पढ़ते हैं, और सारा नगर द्वार पर इकट्ठा हुआ, और उसने बहुतों को जो नाना प्रकार की बीमारियों से दुखी थे चंगा किया, और बहुत से दुष्ट आत्माओं को निकाला और दुष्ट आत्माओं को बोलने न दिया, क्योंकि वे उसे पहचानती थी। मरकुस भी ठीक वही विधि अपना रहा है जो मत्ती ने अपनाई थी। यीशु ने वास्तव में हजारों रोगियों को चंगा किया था, परंतु सुसमाचार वृतांत में कुछ ही घटनाएं यदा कदा उल्लेख की गई हैं। हमारे लिए ध्यान देने योग्य बात यह है कि दुष्ट आत्माओं के संसार में भी उसे पहचाना जाता था। वे उसे जानती थी और स्वीकार भी करती थी कि वह कौन है, तो भी वे मुक्ति प्राप्त नहीं थी। हमने देखा कि वह संपूर्ण दिन व्यस्त था, और हम संभवतः सोच रहे होंगे कि वह सुबह देर से सोकर उठेगा, परंतु हम ऐसा नहीं पढ़ते हैं। हम मत्ती 1:35 में आगे पढ़ते हैं, और भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वह उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। मित्रों, अनेक प्रचारक व्यस्त रविवार के बाद सोमवार अवकाश एवं विश्राम का दिन रखते हैं। मैं उन्हें दोष नहीं देता, परंतु यह हम देखते हैं कि यीशु तड़के ही उठकर प्रार्थना करने के लिए एकांत स्थान में चला गया था। हमारे लिए यह एक अति उत्तम सबक है। हम मरकुस 1 उसके 36 से 39 पद में पढ़ते हैं। लिखा है, तब शमौन और उसके साथी उसकी खोज में गए। जब वह मिला तो उससे कहा कि सब लोग तुझे ढूंढ रहे हैं। उसने उनसे कहा, आओ हम और कहीं आसपास की बस्तियों में जाएं कि मैं वहां भी प्रचार करूं, क्योंकि मैं इसीलिए निकला हूं। सो वह सारे गलील में उनकी सभाओं में जा जाकर प्रचार करता और दुष्ट आत्माओं को निकालता रहा। मित्रों, यह सुसमाचार का आरंभ है और यीशु अपनी शिक्षाओं द्वारा श्रोताओं को उद्धार के लिए तैयार कर रहा था, अर्थात अपनी मृत्यु और अपने पुनरुत्थान के लिए। उसकी शिक्षा, मेरे मित्रों, आपको मुक्ति नहीं दिलाएगी। यह क्रूस पर उसका काम है जो आपको मुक्ति दिलाता है। यहां ध्यान दीजिए कि वह आराधनालय में शिक्षा देता था और संपूर्ण गलील क्षेत्र में दुष्ट आत्माओं को निकालता था। अपने 3 वर्षीय सेवा में उसने उस संपूर्ण क्षेत्र का भ्रमण कर लिया था। और यहां हम फिर से पढ़ते हैं कि उस युग में दुष्ट आत्माओं का प्रभाव बहुत अधिक था। इतिहास में ऐसे 3 युग रहे हैं। पहला था मूसा का युग, दूसरा था एलिया भविष्यवक्ता का युग और तीसरा इस पृथ्वी पर हमारे प्रभु यीशु मसीह का युग। अब हम इस अध्याय के अंतिम आश्चर्यकर्म को पढ़ते हैं। ये कठिन काम थे और अलग अलग प्रकार के थे। यह रोगी कोढ़ी था और कोढ़ ठीक न होने वाला रोग नहीं था, जैसा कि हम लय व्यवस्था में पढ़ते हैं, परंतु यह एक जानलेवा रोग था। मित्रों, यह रोग त्रासदी युक्त था क्योंकि इसमें रोगी का शरीर विकृत होता है, अर्थात टूट टूट कर गिरता है। साथ ही उसे समाज से अलग कर दिया जाता था। मरकुस 1 उसके 40 और 41 पद में हम पढ़ते हैं, और एक कोढ़ी ने उसके पास आकर उससे विनती की और उसके सामने घुटने टेकर उससे कहा, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। उसने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया और उसे छूकर कहा, मैं चाहता हूं, तू शुद्ध हो जा। मित्रों, इस आश्चर्यकर्म का एक महत्वपूर्ण पक्ष भी है कि कोढ़ी को कोई छूता नहीं था। इस रोगी को भी अनेक वर्षों से किसी ने नहीं छुआ था और न ही वह किसी से स्पर्श करने योग्य था। मेरे विचार में उसका परिवार रोटी लाकर एक जगह रख दिया करता होगा और उनके चले जाने के बाद वह रोगी आकर अपना भोजन उठाता होगा। वह शायद दूर से ही उन्हें नमस्कार करता होगा, क्योंकि उन्हें स्पर्श करने का सौभाग्य उसे प्राप्त नहीं था। परंतु हम यहां पर देखते हैं कि प्रभु उस पुरुष का स्पर्श करता है और उसे रोग मुक्त करता है। हम मरकुस रचित सुसमाचार 1 उसके 42 से 44 पद में आगे पढ़ते हैं, और तुरंत उसका कोढ़ जाता रहा और वह शुद्ध हो गया। तब उसने उसे चिताकर तुरंत विदा किया और उससे कहा, देख, किसी से कुछ मत कहना, परंतु जाकर अपने आप को याजक को दिखा और अपने शुद्ध होने के विषय में जो कुछ मूसा ने ठहराया है उसे भेंट चढ़ा कि उन पर गवाही हो। परंतु वह बाहर जाकर इस बात को बहुत प्रचार करने और यहां तक फैलाने लगा कि यीशु फिर खुल्लम खुल्ला नगर में न जा सका, परंतु बाहर जंगली स्थानों में रहा और चहुं ओर से लोग उसके पास आते रहे। मित्रों, अब इस व्यक्ति ने क्या किया? वह चुप नहीं रहा, उसने अपनी चंगाई का समाचार लोगों को बताया, अर्थात यह आग के समान फैल गया। मेरे मित्रों, यदि आपके पड़ोसी आपकी ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो आप अपने घर में आग लगा दीजिए, पूरा मोहल्ला एकत्र हो जाएगा। एक बार मैं कहीं प्रचार करने के लिए गया था और मैंने यूं ही वहां के पास्टर से कह दिया कि यदि वह बड़ी भीड़ इकट्ठा करना चाहता है तो आराधनालय में आग लगा दे। आप जानते हैं उसने क्या किया? रविवार संध्या की सभा के समय उठकर संडे स्कूल विभाग की ओर गया और आकर माइक पर घोषणा की कि आराधनालय में आग लग गई है, उपस्थित गण क्रम में बाहर निकल जाएं। शीघ्र ही अग्निशामक की गाड़ियां की आवाज और सायरन की आवाज आने लगी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि उस पूरे सप्ताह हमारी सभा में भीड़ लगी रही। हमारी सभा का समाचार समाचार पत्र की अंतिम पृष्ठ पर था, परंतु सोमवार को हमारे आराधनालय की आग का समाचार और सभाओं की यथा समय होने की घोषणा समाचार पत्र के मुख्य पृष्ठ पर था। इस प्रकार संपूर्ण सप्ताह हमारी सभाओं में भीड़ एकत्र होती रही। मित्रों, तब से मैं उस प्रत्येक पास्टर को जो आम सभाएं करना चाहते हैं यही सुझाव देता हूं कि वह अपने आराधनालय में आग लगा दें। भीड़ एकत्र करने का यही एक सबसे अच्छा तरीका है। मेरे कहने का मतलब यह नहीं है कि आप सचमुच में उस घर में आग लगा दें, लेकिन लोगों को जागृत करें। मुझे एक प्रचारक की बात बहुत अच्छी लगी। उसने कहा, यीशु ने उस कोढ़ी से कहा कि किसी से न कहे, परंतु उसने सबसे कह दिया। प्रभु हमसे कहता है कि हम सबको सुसमाचार सुनाएं, परंतु एक को भी नहीं सुनाते। मुझे उसकी बात बहुत अच्छी लगी। मैं जो कहना चाहता हूं वह यह है मेरे मित्रों कि उसकी अवज्ञा हमारी अवज्ञा से बुरी नहीं थी। हमें आदेश दिया गया कि हम सबको सुसमाचार सुनाएं, परंतु हम एक को भी नहीं सुनाते हैं। उसके द्वारा सुसमाचार फैलाने का परिणाम यह हुआ कि यीशु के पास भीड़ आने लगी और यीशु ने वहां से कफरनहूम चले जाना उचित समझा। प्रिय मित्रों, अध्याय एक का हमारा अध्ययन यहाँ पर समाप्त होता है और अध्याय दो आरंभ होता है। यह अध्याय की गतिविधियों से पूर्ण है और इस अध्याय का आरंभ और संयोजक से होता है, जिससे प्रकट है कि अध्याय दो अध्याय एक का ही भाग है। यह एक ऐसा शब्द है जो बीती घटना और आने वाली घटना का संयोजन करता है। अब हम मार्कुस रचित सुसमाचार दो अध्याय उसके एक पद में इस प्रकार पढ़ते हैं, कई दिन के बाद वह फिर कफरनहूम में आया और सुना गया कि वह घर में है। मित्रों, कुछ दिन बाद वह फिर से कफरनहूम में आया। हम पहले देख चुके हैं कि कफरनहूम एक प्रकार से यीशु का मुख्यालय था। हमने देखा था कि यीशु ने एक कोढ़ी को चंगा किया था और उसे आदेश दिया था कि वह किसी पर प्रकट न करे, अर्थात दूसरों को न बताए, परंतु उसने प्रचार कर दिया और विशाल जनसमूह यीशु के पास आ गया, जिसके कारण यीशु को वहां से हटकर जंगल में जाना पड़ा। मेरे मित्रों, यीशु नहीं चाहता था कि मनुष्य उसे किसी चमत्कारी बाबा के रूप में पहचाने। वह आत्मिक सेवा के लिए आया था। वह संसार के पापों के लिए क्रूस पर मरने के लिए आया था और चमत्कारी बाबा के रूप में उसका प्रचार सुसमाचार को स्पष्ट कर सकता था, इसलिए वह नहीं चाहता था कि लोग उसे चमत्कारी बाबा कहें। मित्रों, चंगाई और अन्य भाषा बोलने के वरदान पर बल देने वालों के प्रति मैं चिल्लाकर आपत्ति जताता हूँ। इसका मुख्य कारण यही है कि निसंदेह ये वरदान आज के युग में आवश्यक हैं, परंतु हम उन्हें यथास्थान नहीं रखते हैं। किसी ने एक दिन मुझसे कहा, डॉक्टर साहब का अमुक व्यक्ति भी आपके जैसा प्रचार करता है, परंतु उसके पास चंगाई का वरदान भी है। जी हाँ, परंतु क्या वह सुसमाचार प्रचार के लिए पहचाना जाता है? क्या इसी कारण लोग उसकी सभा में जाते हैं? क्या वे उद्धार पाने के लिए उसकी सभा में सुसमाचार सुनने जाते हैं, या चंगाई बल पर जोर देने के लिए, या वहां चंगाई पाने के लिए जाते हैं? मित्रों, उस कारण से जाते हैं ताकि उन्हें चंगाई मिले। मैं सोचता हूं कि हमें आज यह निश्चित कर लेना है कि हमारा उत्तरदायित्व सुसमाचार प्रचार करना है। मार्कुस के सुसमाचार में हम देख चुके हैं कि एक कोढ़ मुक्त मनुष्य के प्रचार के कारण हमारे प्रभु के काम में कैसी बाधा आ गई, अर्थात बाधा उत्पन्न हो गई। इस कारण उसे कफरनहूम से चले जाना पड़ा। हम नहीं जानते कि कितने दिनों के लिए उसे जाना पड़ा और कब तक वह वहां से दूर रहा। अब प्रभु यीशु फिर से कफरनहूम लौट आता है और उसी घर में है जहां वह अध्याय एक में था, अर्थात शिमोन पतरस के घर में। अब हम अगले अध्ययन में इसे देखेंगे कि उस घर में क्या हुआ। तो मित्रों, यहाँ पर हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है और अगले अध्ययन में हम उसके आगे देखेंगे कि इस घर में उसके साथ और क्या क्या घटनाएं घटी। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप अगले अध्ययन में अवश्य शामिल हो, ताकि हम उसके आगे के विषय को सीख सकें और अपने जीवन में भी उसे लागू करने पाए। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे और आपकी सहायता करे कि आप परमेश्वर के सुसमाचार को लोगों तक पहुंचा सके, न केवल चंगाई पाने के लिए बल्कि इस बात के लिए कि आप उद्धार पाए और हमेशा के लिए पाए। प्रभु आपको आशीष दे।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन TWR पोस्ट बॉक्स नंबर 4310 नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन TWR पोस्ट बॉक्स नंबर 4310 न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
चलो जय 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 कार करो रे लोगो, अब जल्दी ही आएगा यहोवा। सामने आओ पास उसके तुम करो आराधना। चलो जय 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 कार करो रे लोगो, अब जल्दी ही आएगा यहोवा। सामने आओ पास उसके तुम करो जयकार करो रे लोगो, अब जल्दी ही आएगा यहोवा। सामने आओ पास उसके तुम करो आराधना। प्यार हमें वो कृपा वो करता हमेशा, वो है मेरा सहारा, वो ही है मेरी आशा। परमेश्वर यहोवा हम उसके बच्चे हैं, वो है मेरा पिता। परमेश्वर यहोवा हम उसके बच्चे हैं, वो है मेरा पिता। मेरे दिल में संगीत सुहाना, तेरी कृपा हो मुझ पर, गाऊं मैं तेरा तराना। यीशु मेरा सुर है, ताल है मेरा, वो है जीवन मेरा। यीशु मेरा सुर है, ताल है मेरा।